दौला पुस्तक 16वीं लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सीते ओम नमः सीते ओम नमः सीते ओम शुतात्मने नमो अरिहंताणं नमो सीतानं नमो आयरियाणं नमो लोवज्जायाणं नमो लोवे सौवसाऊनं मुनिसूवय देशयरं परमिय मुनिसूवयं जिनं देवं संकममनुगमिनं जहासुवं वन्नैस्सामो।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है। इसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा चल रही है उसमें से अभी हम संक्रम अनुयोग द्वार देखते हुए अनुभाग संक्रम का प्रकरण चल रहा है अपना, और हम 16वीं पुस्तक के 390 पृष्ठ पर आ गए 390। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा हमने भंग विषय देखा था, फिर नाना जीवों की अपेक्षा काल की बात एक नहीं नाना पेज नंबर 390 नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट संक्रमण का काल देखा। अभी जघन्य अनुभाग संक्रमकों का काल नाना जीवों की अपेक्षा हम देख रहे हैं। देखो यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अनुभाग संक्रामकों के काल की प्ररूपणा की जाती है यथा पांच ज्ञानावरण। देखो यहाँ नाना जीवों की बात है, एक जीव की अपेक्षा इसका जघन्य कहाँ होता है याद है ना, 12वें में आवली प्लस एक समय बाकी, तब एक जीव की अपेक्षा तो एक ही समय है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई 12वें गुणस्थान में उस पोजीशन पे आएगा। हाँ तो जघन्य से एक समय, उत्कर्ष से संख्यात समय होगे। देखो अभी हम पढ़ते फिर पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सम्यक्त्व ये भी दर्शन मुखी क्षपणा में होता है, पुरुष वेद, चार संज्वलन, पांच अंतराय के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य एक समय है और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। नाना जीवों की अपेक्षा एक के बाद एक शपक श्रेणी चढ़ेंगे उसकी अपेक्षा, या सम्यक्त्व के लिए वो दर्शनमुखी क्षपणा करने वाले नाना जीव लेना। अनंतानुबंधी कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यातवे भाग मात्र। देखो अनंतानुबंधी कषायों की बात हमने देखी थी, उसका जघन्य कब होता है कि विषय योजना के बाद वो जब संयोजना करता है उसमें भी परिणाम अलग अलग हो गए, वो भी जघन्य परिणाम से करने वाला जीव है। तो कहते इसे एक ने किया दूसरे ने किया इसे कितना, तो क्योंकि चारों ही गति की जीव अनंतानुबंधी की संयोजना विसंयोजना कर सकते हैं, तो विसंयोजना के बाद संयोजना करने वाले एक के बाद एक जीव आवली के असंख्यात विभाग होगे। सम्यक मिथ्यात्व और 8-9 कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है, क्योंकि दर्शन मुखी सपना में सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य होगा अंतिम कांडक में, तो एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त और ऐसे करने वाले संख्यात जीव तो संख्यात अंतर्मूर्त होगा। और 8-9 कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल वो भी क्षपणा में होगा ना, वो भी अंतर्मूर्त कांडक में, 8 एक मिनट, एक जीव की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त देखा था क्या हमने जघन्य अनुभाग संक्रमक का संक्रमण काल पेज नंबर 385 पर अंतर्मूर्त है। अंतिम कांडक लिया था वहां पर। इसलिए एक के लिए अंतर्मुख एक सपना में ही हो गई है, सपना में। तो संख्यात जीवों की संख्यात अंतर्मूर्ति यानी अंतर्मूर्ति होगा वो। तीन आयु कर्मों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल, जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यात वे भाग मात्र है, क्योंकि जघन्य बंध करके उसमें उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा बात एक के बाद एक के बाद एक लेना। मनुष्य आयु में भी वो तो लब्धिया पर्याप्त की आयु बांधकर, हाँ, तिर्यक आयु के जघन्य व अजघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल सर्वकाल है, क्योंकि अनंत जीव वो बांध रहे हैं तो हमेशा वो जघन्य वाले भी हो गए अजघन्य वाले भी हो गए। नरक गति देवगति, देखो इनका जघन्य कब होता है, उद्वेलना के बाद दोबारा बांधेगा वो असंगी पंचेंद्रिय, तब इसका जघन्य होगा। तो नरक गति देवगति और मनुष्य गति नाम कर्मों तत्प्रायोग अनुपूर्वी नाम कर्मों, वैक्रियक शरीर वैक्रियक शरीर अंगोपांग वैक्रियक बंधन और वैक्रियक संघात नाम कर्मों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यात वे भाग मात्र है, यानी इतने जीव लगा उसकी जो उद्वेलना के बाद फिर दोबारा बंद होने की अपेक्षा ये बात कर दी। इसी प्रकार उच्च गोत्र के संबंध में कहना चाहिए, ये सब उद्वेलना होने वाली नाम प्रकृतियां हैं और वो गोत्र तो अलग से बताए, इसलिए आहार को वहां नहीं लिया था, क्योंकि आहार के करने वाले तो संख्या थी जीव हो गए। तो आहारक शरीर आहारक शरीर अंगोपांग आहारक बंधन आहारक संघात और तीर्थंकर जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय है। हमने देखा था कि इसकी सत्ता नहीं थी और बांधने वाले जीवों को लेना। शेष अनुद्वेल्यमान नाम प्रकृतियों और निज गोत्र के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल सर्वकाल है, वो सूक्ष्म निगोद में होगा। हाँ जरा उसमें माइक में बोलो फिर से दोबारा।
निज गोत्र का जघन्य अनुभाग
हाँ
सातवें नरक में होगा।
क्यों?
सम्यक्तों के सन्मुख वाले जीव को
बंध की बात नहीं है, यहाँ सत्ता की बात है। अनुभाग संक्रम कब होगा? अत समुत्पत्ति वाले को होगा ना, देख लो फिर से। अभी हमने उसका स्वामी देखना था ना, 385 पर एक जीव की अपेक्षा काल देखा था, निज गोत्र को देखना था ना हमको। चार आयु कर्म पेज नंबर 380-381 के आसपास है कहीं पर। तीन सौ अस्सी पेज है। हाँ यहाँ क्या लिखा है देखो, यानी सातावेदनी असातावेदनी ऊपर से छठी सातवीं लाइन है। अनादि सत्कर्मिक नाम प्रकृतियां यानी जिसको उद्वेलना नहीं होती वो, और निज गोत्र का जघन्य अनुभाग संक्रम अत समुत्पत्तिक सत्कर्मिक होकर जघन्य सत्कर्म से नीचे बांधने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय के होता है। आई ना बात ही? इसलिए वो हमेशा होगा सर्वकाल, इसीलिए तो कहा। अगर सातवें नरक में कहते आप तो वह सर्वकाल कैसे घटित होगा। देखो केवल बंद होना इसकी बात नहीं लेनी आपको। हाँ, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर की प्ररूपना की जाती है। यथा अभी अंतर को देखना है, पांच ज्ञानावरण, पहले उत्कृष्ट का अंतर देखेंगे ना, तो इसका उत्कृष्ट बंद करने वाले को उत्कृष्ट संक्रमण होता है, और यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा अंतर देखना है, तो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व सोलह कषाय, नौ नौ कषाय और चार आयु कर्मों के, तथा यश कीर्ति को छोड़कर सब नाम प्रकृतियों, निज गोत्र और पांच अंतराय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का अंतरकाल जघन्य से एक समय, यानी एक समय के लिए किसी ने नहीं किया ये हो सकता है, और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है, यानी असंख्यात लोक मात्र के अंतर से इतना उत्कृष्ट संकलेश से इनका बंध हो सकता है, क्योंकि इसमें परिणाम भी लेना, अनुभाग के कारणभूत परिणाम भी लेना है, अकेले आयु में केवल उत्कृष्ट आयु बांधने इतना ही नहीं लेना, उत्कृष्ट बंध के साथ उत्कृष्ट अनुभाग भी होना चाहिए। साता वेदनीय, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, यश कीर्ति और उच्च गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का अंतर नहीं होता, क्योंकि साता वेदनीय का उत्कृष्ट संक्रामक हमने देखा था कि दसवें के बाद तेरहवें के अंत तक होगा। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का वेदक सम्यक दृष्टि सभी के होगा, यश कीर्ति भी तेरहवें महीने हमेशा रहेगा, उच्च गोत्र भी हमेशा रहेगा, तो उसका अंतर नहीं होता। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का अंतरकाल समाप्त होगा। अब जघन्य अनुभाग संक्रामकों के अंतरकाल की प्ररूपना इस प्रकार है। अब जो क्षपक वाली प्रकृति है ना, उसको श्रेणी का अंतर छह महीने का अंतर देख लेना, तो पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, संज्वलन लोग, स्त्री वेद, छह नौ कषाय और पांच अंतराय के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का अंतरकाल जघन्य से एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा है और उत्कर्ष से छह मास मात्र है। देखो अकेले स्त्री वेद को लिया, क्योंकि पुरुष वेद का एक साल भर होकर साधिक एक साल एक वर्ष, और नपुसक वेद का तो पृथक्व वर्ष होगा, यानी उस वेद सहित चढ़ने वाले जीवों का अंतर चाहिए। स्त्री वेद सहित चढ़ने वाले की जरूरत नहीं, क्योंकि स्त्री वेद का जघन्य किसी भी वेद सहित चढ़ने वाले को एटे उसी पोजीशन पर होता है, इसलिए उसमें तो छह महीने का अंतर बता दिया। अब तीन, संज्वलन और पुरुष वेद का भी अंतरकाल इसी प्रकार ही है, विशेष इतना है कि इनका उक्त अंतरकाल उत्कर्ष से साधिक एक वर्ष मात्र है। तीन संज्वलन में ये लेना, क्रोध सहित चढ़ने वाला, मान सहित चढ़ने वाला, माया सहित चढ़ने वाला, अलग अलग जो जीव है उनके लिए वो इतना अंतर पड़ सकता है। विशिष्ट कषाय के उदय सहित चढ़ने वाले के लिए साधिक एक वर्ष का अंतर पड़ सकता है। इसी प्रकार नपुसक वेद के संबंध में कहना चाहिए, विशेष इतना है कि उत्कृष्ट अंतरकाल संख्यात वर्ष मात्र है, जिसको हम पृथक्व वर्ष कहते हैं या संख्यात वर्ष कहेंगे। अनंतानुबंधी कषायों का वह अंतरकाल, अभी जघन्य का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा लेना है, जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। देखो ये तो असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणामों के भेद है, हाँ, तो वहां विसंयोजना के पश्चात संयोजना करने वाले जीव है, और उसमें वो पर्टिकुलर जघन्य अनुभाग बंध अध्यवसान होना चाहिए, इसलिए इतना अंतर पड़ सकता है। तीन, आयु कर्मों का वह अंतरकाल, जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है, इसमें भी यही बात ली। जो नाम प्रकृतियां सादी सत्कर्म वाली है, सादी सत्कर्म कहा, सादी का बंध या सादी उदय नहीं कहा, सादी सत्कर्म है ना, उसकी सत्ता नहीं थी और सत्ता हुई, उन नाम प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है, क्योंकि ये परिणामों के भेद बताना है इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण उसका अंतर पड़ सकता है। इसी प्रकार उच्च गोत्र की भी प्ररूपणा करना चाहिए, क्योंकि उच्च गोत्र भी उद्वेलना वाली प्रकृति है, यानी उसकी शादी हो गई ना, उसकी सत्ता की शादी हो गई है, तो उसमें भी परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण उसके वेरिएशन हो गए। शेष नाम प्रकृतियों नीच गोत्र तिर्यक आयु मिथ्यात्व आठ कषाय, देखो नौ कषाय नहीं, ये कषाय लिए है ना, ये सब कहाँ होगा जगन्य? अरे सूक्ष्म निगोद में होगा ये सब प्रकृति। देखो शेष नाम प्रकृतियां ली जो अनादि सत्कर्मिक है, वो निज गोत्र है, तिर्यक आयु है, मिथ्यात्व है, आठ कषा है, वेदनीय साता या असाता, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, यानी सूक्ष्म निगोद में वो जघन्य होता है। सपना में इसका सवाल ही नहीं होता है। इस प्रकार अंतरकाल की प्ररूपणा समाप्त हुई। अब सन्निकर्ष की प्ररूपणा की जाती है। सन्निकर्ष याद है, एक का उत्कृष्ट होगा तो दूसरे का उत्कृष्ट होगा कि नहीं होगा, यानी कैसा होगा, उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट होगा? यथा मति ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक, हमने देखा था ना, उसका उत्कृष्ट बंद करके आवली के पश्चात उसका उत्कृष्ट का संक्रामक होता है, वह श्रुत ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है, वह षट्स्थान पतित, ये कुछ अलग बात है, ऊपर जरा पढ़ते प्राकृत में ऊपर से चौथी लाइन सन्यास है ना, तम जहां मदी आवरणस्य उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामको सुदावरणस्य तंतु छठान पदिदा, इसका ट्रांसलेशन जो किया है वो नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए मति ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक श्रुत ज्ञानावरण के अनुभाग का संक्रामक होता है। उत्कृष्ट शब्द निकाल दो, उत्कृष्ट नहीं चाहिए, यानी वो उसका संक्रामक है कि नहीं तो है, और वो कैसा है, वह षट्स्थान पतित होता है।
उत्कृष्ट भी हो सकता है ना,
होता है ना,
तो षट्स्थान पतित में उत्कृष्ट भी हो सकता है और
अनुत्कृष्ट भी होता है, और अनुत्कृष्ट होगा तो षट्स्थान पतित होगा, इतना पूरा होना चाहिए वाक्य, यानी वो कुछ यहाँ शायद छूट गया वाक्य, या वो टेक इट फॉर ग्रांटेड इस तरह से लिखा है, यानी ऐसा लिखना चाहिए था मति ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक श्रुत ज्ञानावरण के अनुभाग का संक्रामक होता है, नियम से होता है, और वह उत्कृष्ट भी होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है, ऐसा लिखना बीच में, और अनुत्कृष्ट हो तो षट्स्थान पतित होता है। इन्हें हमने इसी प्रकार पहले देखे थे ना बहुत सारे स्थान, इस प्रकार जानकर आगे भी ले जाना चाहिए, आगे भी ले जाना चाहिए ने हर एक में वो सब लगा लेना, क्योंकि ज्ञानावरण का आपस में ज्ञानावरण भी लगाते हैं ना, इसे आपस में लगा लेना, क्योंकि देखो एक ही उत्कृष्ट अनुभाग बंद एक का कर रहा है तो उसी समय अन्य के छह स्थान पतित होते हैं उसमें, यानी अनंत गुणा तक का उसमें डिफरेंस पड़ सकता है। स्थिति में तो चार चतुस्थान पतित देख रहे हैं जघन्य अनुभाग संक्रामक के, इन्हें उत्कृष्ट में इतना ही करके छोड़ दिया, जघन्य अनुभाग संक्रामक के सन्निकर्ष की प्ररूपणा इस प्रकार है। अब जो ज्ञानावरण में जघन्य कहाँ होता है, तो एक का जघन्य तो सबका ही जघन्य ही होगा, क्योंकि वहां परिणाम सदृश है, जो मति ज्ञानावरण के जघन्य अनुभाग का संक्रामक है वह नियम से शेष चार ज्ञानावरण प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। वह चार प्रकार के दर्शनावरण के नियम से जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। निद्रा और प्रचला के नियम से असंक्रामक होता है क्योंकि वह निद्रा प्रचला की अभी स्थिति नहीं, सत्व नहीं रहा, अंतिम समय में सत्व नहीं है, इसलिए असंक्रामक कहा। वह पांच अंतराय प्रकृतियों के नियम से जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। शेष प्रकृतियों में जिनका सत्व है उनके नियम से अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। देखो सबके साथ लिया, स्वस्थान भी और परस्थान भी है। ये शेष का अजघन्य क्यों लिखा? हाँ, जो बाकी का सत्व पड़ा है और आगे जाकर जिनका उत्कृष्ट भी अजघन्य कहलाएगा और अन्य भी जो यहाँ नीच गोत्र वगैरह भी जो पड़ा है तो नीच गोत्र का जघन्य तो बाद में होगा ना, अयोग्य में होगा ज्यादा। इस प्रकार सन्निकर्ष की प्ररूपना समाप्त हुई। यहाँ स्वस्थान और परस्थान के भेद से अल्पभूत्व दो प्रकार का है, यानी अनुभाग के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट का डिफरेंस यानी वो कंपैरिजन करेंगे। 64 पद वाला जो अल्प बहुत्व दंडक है वह यहाँ प्रकृत है। अनुभाग के विषय में ये हमेशा 64 पद वाला भंग कहते, वो तो दंडक कहते। वह दो प्रकार का है, उत्कृष्ट पद विषयक और जघन्य पद विषयक। यानी प्रत्येक प्रकृति का जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो कौन से प्रकृति से किसका अनुभाग ज्यादा है या कम है वो बताएंगे आप। कम से शुरुआत करेंगे और अधिक से बढ़ेंगे वहां पर। उत्कृष्ट पद की अपेक्षा जैसे अनुभाग बंध के विषय में उक्त अल्पभूत्व दंडक का कथन किया गया है वैसे ही उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के विषय में भी उसका कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा सम्यक्त्व में अनंत गुणहीन इस प्रकार निष्ठापक पतितों को करना चाहिए। अर्थात उसी का अर्थ है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दो अबंध प्रकृतियों के भी, वो बंधने वाली नहीं है, मिथ्यात्व में से तैयार होती है, दो अबंध प्रकृतियों के भी अल्पभूत्व को यहाँ अनंत गुणहीन क्रम से कहना चाहिए। यह उत्कृष्ट बंध की अपेक्षा उत्कृष्ट संक्रम में भेद है क्योंकि बंध में तो इन दोनों का नाम ही नहीं लेंगे परंतु यहां उनको संक्रमण में उसको लेना चाहिए। उन्होंने इसको कहा नहीं है परंतु वहां तो अनुभाग बंध का जो 64 का विषय है कौन से प्रकृति से कौन सा कितना हीन है कम ज्यादा है वो सब यहां वहां से जान लो इतना ही कहकर छोड़ दिया है। अब जघन्य पद की अपेक्षा देखते हैं। हमने उत्कृष्ट की बात देखी थी ना अनुभाग बंध में सातवें पुस्तक में देखा था कि महाबंध में केवल देखा था। ये 64 पद वाला तो हमने देखा है अनुभाग का। अनुभाग बंध का कहां पर बंध में आते 64 पद का वहां बताया था 64 वाला याद नहीं है। महाबंध में तो नियम से देखा था अनुभाग बंध का। अभी जघन्य पद की अपेक्षा बताएंगे 393। संज्वलन लोभ सर्वमंद अनुभाग वाला है। संज्वलन माया अनंत गुणी है। क्योंकि पहले माया का सपना होगी अंतर्मुर जाके फिर लोभ का होगा। संज्वलन मान अनंत गुणा है, संज्वलन क्रोध अनंत गुणा है, पुरुष वेद में वह अनंत गुणा है। हमने देखा ना अंतर्मुर पहले पहले उसको जगन्य होगा। सम्यक्त्व में अनंत गुणा है, सम्यक मिथ्यात्व में अनंत गुणा है, मनःपरे ज्ञानावरण दानांतराय में अनंत गुणा है। देखो ये जब देशघातीकरण हुआ था तो भी इन प्रकृतियों को इकट्ठा इकट्ठा लिया था। देखो अवधि ज्ञानावरण और लाभांतराय में अनंत गुणा है, श्रुत ज्ञानावरण और चक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय में अनंत गुणा है, चक्षु दर्शनावरण में अनंत गुणा है, मति ज्ञानावरण और परिभोगांतराय में अनंत गुणा है। यानी वो उसके लिए जघन्य है। पहले हमने क्या देखा था सन्निकर्ष में, एक का जघन्य तो सबका जघन्य, पर सबका जघन्य समान है ऐसा नहीं कहा। तो जघन्य अनुभाग में जो अनंत गुणा का डिफरेंस है वो बता रहे। 12 तक पढ़ा ना हमने, मति ज्ञानावरण परिभोग अनंत का, फिर केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण और वीर्यांतराय में अनंत गुणा है, प्रचला में अनंत गुणा है, ये तीनों को समान में लिया उनका जघन्य। वीर्यांतर है तो देशघाती का होगा और ये सर्वघाती का जघन्य। प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा में अनंत गुणा है, हास्य में अनंत गुणा है, रति में अनंत गुणा है, जुगुप्सा में अनंत गुणा है, भय में अनंत गुणा है, शोक में अनंत गुणा है, अरति में अनंत गुणा है, स्त्री वेद में अनंत गुणा है, नपुसक वेद में अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी मान में अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी क्रोध में विशेष अधिक है। अभी अनंत गुणा नहीं कहा, विशेष अधिक है। अनंतानुबंधी माया में विशेष अधिक है, इनका जघन्य तो संयोजना होते समय था। अनंतानुबंधी लोभ में विशेष अधिक है क्योंकि चारों एट ए टाइम बन रही है और विशेष अधिक का डिफरेंस होगा। वैक्रियक शरीर में अनंत गुणा है, तिर्यंश आयु में अनंत गुणा है, मनुष्य आयु में अनंत गुणा है, नरक गति में अनंत गुणा है, मनुष्य गति में अनंत गुणा है, देव गति में अनंत गुणा है, उच्च गोत्र में अनंत गुणा है, नारकायु में अनंत गुणा है, देवायु में अनंत गुणा है, औदारिक शरीर में अनंत गुणा है, तेजस शरीर में अनंत गुणा है, कारमान शरीर में अनंत गुणा है, तिर्यक गति में अनंत गुणा है, नीच गोत्र में अनंत गुणा है, अयश कीर्ति में अनंत गुणा है, प्रचला प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा निद्रा में अनंत गुणा है, स्त्यान वृद्धि में अनंत गुणा है। वो सूक्ष्म निगोत के है सब। अप्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुणा है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है। देखो अप्रत्याख्यान के सभी आपस में विशेष अधिक कहेंगे। अप्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, अप्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण मान में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है। असाता वेदनी में अनंत गुणा है, यश कीर्ति में अनंत गुणा है, साता वेदनी में अनंत गुणा है, मिथ्यात्व में अनंत गुणा है। ये सब यहाँ मिथ्यात्व तो सारे सूक्ष्म निगोद वाले। अब आहार शरीर में अनंत गुणा है, बंधने के समय होगा। इस प्रकार ओघ अल्पबोधत्व समाप्त हुआ। 58 परंतु कहीं कहीं डबल हुए तो 65 टोटल हुए थे। टोटल हमें लिख के रखा है हमने लास्ट टाइम 65, यहाँ 7 एक्स्ट्रा है। देखो देखो जैसे ज्ञानावरण को जोड़ी जोड़ी ली ना, 8वें पॉइंट पर एक एक्स्ट्रा, 9वें में दूसरा एक्स्ट्रा, दसवें में दो एक्स्ट्रा, बारहवें में एक एक्स्ट्रा, तेरहवें में दो एक्स्ट्रा, सात हो गए ना, अट्ठावन और सात, 65 हो गए। हाँ, सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो को भी लिया था। हाँ, अभी नर नीचे, अब ये तो ओग में हो गया, अब मार्गणा में। नरक गति में सबसे मंद अनुभाग वाली सम्यक तो प्रकृति है। ये कौन सा दंडक है? संक्रमण वाली बात चल रही है? क्या चल रही है? मंद अनुभाग वाला है, इतना ही लिया था। नहीं, सन्निकर्ष की प्रवृत्ति समाप्त हो गई थी, यहाँ अल्पबोध वो चल रहा है। ये अनुभव संक्रम ही लेना चाहिए ना, संक्रमण होगा, संक्रमण चलेगा इन्हें। सत्ता में, सत्ता की बात है ना, जगन्य की सत्ता। तो मंद अनुभव वाली सम्यक तो प्रकृति है, उससे सम्यक मिथ्या तो में वह अनंत गुणा है। नरक गति में कब उसका जगन्य लेना है? जरूर उसमें बोलो ना। कृतकृत्य वेदक में केवल सम्यक प्रकृति है ना, सम्यक मिथ्या तो कहाँ गई?
उसको सम्यक तो नहीं।
सम्यक प्रकृति को मंद अनुभाग वाली कह सकेंगे हम वहाँ पर, परंतु सम्यक मिथ्या तो को कहाँ लेना फिर? क्या रेगुलर जो है वो लेना?
नहीं, सम्यक मिथ्या तो का हम लोग सम्यक मिथ्या तो गुणता में
ख्याल नहीं है। ठीक है, नरक गति पहले स्वामित्व में लिया था, स्वामित्व तो ओग में ही लिया था, उसमें कुछ अलग से नहीं लिया था। यानी उनके जो रेगुलर उत्कृष्ट अनुभाग उन्हीं के लिए जगन्य होगा ना, वहाँ तो उसके कुछ समय मिथ्या तो और समय प्रकृति का अनुभाग थ्रू आउट उत्कृष्ट ही रहता है जब तक वेदक समय दृष्टि है। उसी को जगन्य कहेंगे क्या है? यानी उनके लिए वही जगन्य अनुभाग, यानी सब में वो जगन्य अनुभाग वाली वही है, इस तरह से ले सकते हैं। सम्य प्रकृति के लिए तो हम ले सकते हैं कि उसकी कृतकृत्य वेदक वाला, पर समय मिथ्या तो हमें पता नहीं है, इसलिए उसको शायद उसी को लिए अनंत गुणा भी कहा होगा। अनंतानुबंधी मान में अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी क्रोध में विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी माया में विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी लोभ में विशेष अधिक है, तिर्यगायु में अनंत गुणा है, मनुष्यायु में अनंत गुणा है, नारकायु में अनंत गुणा है। देखो, ये तिर्यगायु मनुष्यायु तो बंधने वाली है, और नारी की उसकी सत्ता है नारकायु में। औदारिक शरीर में अनंत गुणा है, वैकृत शरीर में अनंत गुणा है, तेजस शरीर में अनंत गुणा है, और कारमान शरीर में अनंत गुणा है। हास्य में अनंत गुणा है, रति में अनंत गुणा है, नरक गति में अनंत गुणा है, तिर्यंच गति में अनंत गुणा है, मनुष्य गति में अनंत गुणा है, और देव गति में अनंत गुणा है। देखो, यहाँ बंधे की बात ही नहीं है, सत्ता में है ना वो। नीच गोत्र में अनंत गुणा है और यश कीर्ति में अनंत गुणा है, प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा में अनंत गुणा है, प्रचला प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा निद्रा में अनंत गुणा है, जुगुप्सा में अनंत गुणा है, भय में अनंत गुणा है, शोक में अनंत गुणा है, अरति में अनंत गुणा है, पुरुष वेद में अनंत गुणा है, स्त्री वेद में अनंत गुणा है, नपुसक वेद में अनंत गुणा है, मन परे ज्ञानावरण में अनंत गुणा है, स्त्यान वृद्धि में अनंत गुणा है, दानांतराय में अनंत गुणा है, अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय में अनंत गुणा है, शुद्ध ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय में अनंत गुणा है, चक्षु दर्शनावरण में अनंत गुणा है, आभिनिबोधि ज्ञानावरण और परिभोगांतराय में अनंत गुणा है, अप्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुणा है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, अप्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, अप्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुणा है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है। यह एक वाक्य छूट गया था, हमने लिखा था एक लाइन कि प्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है और प्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है, मान क्रोध माया लोभ। उसके पश्चात आपके उसमें है क्या वो लाइन, डाल दो उसके बीच में डिट्टो करके मान के नीचे माया में लिखो अनंत विशेष अधिक और क्रोध के नीचे लोभ में विशेष अधिक। उसके बाद संज्वलन मान में अनंत गुणा, संज्वलन क्रोध में विशेष अधिक, संज्वलन माया में विशेष अधिक, संज्वलन लोभ में विशेष अधिक है। फिर केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, असातावेदनीय और वीर्यांतराय में अनंत गुणा है, उच्च गोत्र में अनंत गुणा है, अयश कीर्ति में अनंत गुणा है, सातावेदनीय में अनंत गुणा है, मिथ्यात्व में अनंत गुणा है, आहार शरीर में अनंत गुणा है। इस प्रकार नरक गति में जघन्य अनुभाग संक्रम दंडक समाप्त हुआ, ये जघन्य में लगाया। पहले फिर अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान विशेष अधिक क्यों कहा था? अभी देखो यहाँ अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान में आए तो अनंत गुणा कहा था, और अभी हमने ओग में देखा था अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान विशेष अधिक कहा था। निकालो पेज नंबर 394। आहारक शरीर सत्ता में पड़ा है ना, क्योंकि वो बांधा था कहाँ पर, आठवें में बांधा था शायद उपशम श्रेणी में, और अभी यहाँ आया है वो जी। उसका जगन ने भी किया तो इतना तो रहेगा उसका। देखो वहां हम पढ़ रहे ना, हमने नंबरिंग डाला था 49 पर अप्रत्याख्यानावरण लोभ था और 50 पर प्रत्याख्यानावरण मान विशेष अधिक लिखा था, मिला क्या आपको 394 पेज पर 49-50 में वहां विशेष अधिक लिखा था और यहाँ अनंत गुणा लिखा है अप्रत्याख्यानावरण लोभ से प्रत्याख्यानावरण मान। ऊपर देख लेते जरा, क्योंकि वैसे ही होना चाहिए अनंत गुणा प्राकृत में। जरा सुनो, अपच्छक खान माने अनंत गुणों कोधे विशेष माया विशेष लोभ विशेष, पच्छक माने अनंत गुणों है ना, तभी मैं पढ़ते समय मुझे विकल्प आया था पर मैंने वो प्राकृत में नहीं देखा। प्राकृत की चौथी लाइन देखो, तो वो 50 नंबर में जो लिखा था ना प्रत्याख्यान मान में विशेष अधिक है, वो अनंत गुणा होना चाहिए था। मान में हाँ, किसमें, कौन से पेज पर? 394 की बात कर रहे हैं। 394 में हाँ, वो प्रत्याख्यान और मान जो है ना वो अनंत गुना चाहिए, क्योंकि अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान में वो अनंत गुना का डिफरेंस पड़ेगा।
तो सपना में होगा
इसका सूक्ष्म केंद्रित,
सूक्ष्म केंद्रित होगा।
पढ़ते पढ़ते मुझे इसे विशेष अधिक क्यों लिखा था, अपन मैं ऊपर देखना भूल गए, मैं अभी फिर आया ना पच्चक का माने अनंत गुणों कोहे वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ेंगे, ये जगन्य अनुभाग दंडक समाप्त हुआ, वहां तो हमने देखा था अनुभाग संक्रम दंडक नरक गति में हो गया। अब तिर्यंच गति में पढ़ते हैं। सम्यक तो प्रकृति सबसे मंद अनुभाग वाली है, उससे सम्यक मिथ्यात्व में वह अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी मान में अनंत गुणा है। उग में जगन्य में क्या क्या कहा था, पुरुष वेद के बाद सम्यक तो और फिर सम्यक मिथ्यात्व लिया था। उनके लिए तो समय मिथ्यात्व का तो अंतिम अनुभाग कांडक लेना है, परंतु यहाँ नहीं है। हाँ ना, हाँ कृतकृत्य वेदक, जब वो अंतिम आवली प्लस एक समय बाकी है तब उसके अंतिम होगा। तो समय मिथ्यात्व में अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी मान में अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी क्रोध में विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी माया में विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी लोभ में विशेष अधिक है। ये संयोजना करने वाला लेना है। फिर वैक्रियक शरीर में अनंत गुणा है, वहां नारकी के लिए वैक्रिक शरीर बाद में लिया था, वहां आयु डाले थे और औदारिक शरीर डाला था, क्योंकि तिर्यंच गति में वैक्रिक शरीर का जघन्य होगा ना, क्योंकि वो तो असंगी पंचेंद्रिय उसको बंद करेगा, बंद करेगा ना, तभी होगा। यानी इसके बाद उद्वेलना के बाद तिर्यक आयु में अनंत गुणा है, मनुष्यायु में अनंत गुणा है, नरक गति में अनंत गुणा है, अभी गति पहले लिया, मनुष्य गति में अनंत गुणा है, देव गति में अनंत गुणा है, उच्च गोत्र में अनंत गुणा है, क्योंकि उद्वेलना के बाद उसी में उत्पन्न होगा ना, तिर्यंचो में उत्पन्न होगा पहले। नारकायु में अनंत गुणा है, देवायु में अनंत गुणा है, औदारिक शरीर में अनंत गुणा है, तेजस शरीर में अनंत गुणा है, कारमान शरीर में अनंत गुणा है, हास्य में अनंत गुणा है, रति में अनंत गुणा है, तिर्यंच गति में अनंत गुणा है, नीच गोत्र में अनंत गुणा है, अयश कीर्ति में अनंत गुणा है, वो तो सूक्ष्म निगोत करने वाले हैं ना वो सब, प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा में अनंत गुणा है, प्रचला प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा निद्रा में अनंत गुणा है। स्थान बुद्धि कहाँ गया, जुगुप्सा में अनंत गुणा है, भय में अनंत गुणा है, शोक में अनंत गुणा है, और रति में अनंत गुणा है। रति में अनंत गुणा, पुरुष वेद में अनंत गुणा, स्त्री वेद में अनंत गुणा, नपुसक वेद में अनंत गुणा है, मन परे ज्ञानावरण में अनंत गुणा है, स्त्यान वृद्धि आया, स्त्यान वृद्धि में अनंत गुणा है, दानांतराय में अनंत गुणा है, पहले भी ऐसा ही लिया था, अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय में अनंत गुणा है, श्रुत ज्ञानावरण और भोगांतराय में अनंत गुणा है, चक्षु दर्शनावरण में अनंत गुणा है, मति ज्ञानावरण पूरी भोगांतराय में अनंत गुणा है, अप्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुणा है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, अप्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है। अब प्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुण है, देखो अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान में जब आते हैं ना तो अनंत गुणा हो जाता है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है, संज्वलन मान में अनंत गुणा है, संज्वलन क्रोध में विशेष अधिक है, संज्वलन माया में विशेष अधिक है, संज्वलन लोभ में विशेष अधिक है, केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण असाता विज्ञा और वीर्यांतराय में अनंत गुणा है, यश कीर्ति में अनंत गुणा है, साता वेदनी में अनंत गुणा है, मिथ्यात्व में अनंत गुणा है। इस प्रकार तिर्यंच गति में जघन्य अनुभाग संक्रम दंडक समाप्त हुआ।
यह वैक्रियक शरीर पहले लिया है तो वैक्रियक शरीर तो असंगी जब भी बंद करेगा तब भी उसका जघन्य अनुभाग होगा।
हाँ।
तिर्यंच में और मनुष्य गति और वो तो एकेंद्रिय बांधेगा तभी औदारिक शरीर, तो एकेंद्रिय जो बांधता है
सूक्ष्म निगोद बांधेगा।
हाँ, सूक्ष्म, तो उससे ये जो असंगी पंचेंद्रिय बांधेगा वो जघन्य हो जाएगा वैक्रिय शरीर का। ये तो खाली
प्रकृति इटसेल्फ, उसके अल्पभूत तो अपना अपना होता है कि नहीं, कौन बांधता है उस पर नहीं है, प्रकृति की विशेषताएं है ना, नहीं समझे? हाँ। ये तिर्यंच का हो गया, तिर्यंच में आहारक को लिया था क्या, तो 57 कैसे हो गए? आहारक को क्यों नहीं लिया? तिर्यंच गति में रहते हुए होना चाहिए ना, सत्ता है ना। नरक गति में लिया, तिर्यंच में क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न है। क्या लिया था ना, बीच में कहीं गए? औदारिक वैक्रिक तो लिया था। मिथ्यात्व के बाद वहां लिया था, आहारक शरीर में अनंत गुणा है, मूल में भी 58 का दंडक था। तिर्यंच नरक गति में किसको छोड़ा था, देवायु को छोड़ा होगा ना शायद, देवायु को छोड़ा था नरक गति में। तिर्यंच गति में तिर्यगायु है, मनुष्यायु है, नरकायु, देवायु सब लिए, इसलिए वो एक प्रकृति बढ़ गई यहाँ पर, पर आहारक शरीर लिया नहीं है। ऊपर है क्या? हाँ। मिच्छत्त अनंत गुण इतने हो गए ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू, पेज नंबर 397, नया पैराग्राफ। जिस प्रकार से तिर्यंच गति में सब पदों की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार से तिर्यंच योनिमतियों में भी उक्त सब पदों की प्ररूपना करना चाहिए। मनुष्यों में ओघ निरूपित जघन्य अनुभाग संक्रम दंडक की अपेक्षा नरक गति नाम कर्म तक कोई विशेषता नहीं है। यानी जो ओघ दंडक हमने देखा था ना जघन्य का, ओघ वाला पेज नंबर 393 से शुरू हुआ था। नरक गति कितने नंबर पर थी? 31 नंबर तक। उसके पश्चात नरगति नाम कर्म की अपेक्षा देवगति नाम कर्म में वह अनंत गुणा है, उससे नारकायु में अनंत गुणा है। ओग से क्या डिफरेंस है वो बता रहे हैं। मनुष्य गति को छोड़ा, उच्च गोत्र को छोड़ा, नारकायु में अनंत गुणा है, देवायु में अनंत गुणा है, बाद में मनुष्य गति नाम कर्म में अनंत गुणा है, उच्च गोत्र में अनंत गुणा है, फिर औदारिक शरीर में अनंत गुणा है, बाद में तो लिया फिर औदारिक। यहाँ शेष पदों की प्ररूपणा जैसे ओग जघन्य दंडक में की गई वैसे करना, यानी उसके बाद औदारिक शरीर में लिया ना, उसके बाद आगे का सेम है। यानी 37 पर औदारिक शरीर था, उसके आगे सेम है। इस प्रकार मनुष्यों में जघन्य अनुभाग संक्रम दंडक समाप्त हुआ।
उत्कृष्ट बंद करके
फिर से पूरा प्रश्न पूछो माइक में, पूरा प्रश्न।
मनुष्य गति को पहले क्यों लिया यहाँ पे,
किसमें?
ये मनुष्यों में,
मनुष्यों में तो बाद में लिया, पहले कहाँ लिया?
जघन्य अनुभाग तो गति का
ओग में कहाँ लिया था और वहाँ का मनुष्य में कहाँ लिया? ओग में देखो, ओग में क्या लिया है? नरक गति से मनुष्य गति का अनंत गुणा कहा था, फिर देव गति का। अब मनुष्य गति में मनुष्य गति का जघन्य होगा क्या? बोलो, ओग में मनुष्य गति का जघन्य कहाँ होता है, ये पहले बोलो। इसमें बोलो ना भैया,
सूक्ष्म एकेंद्रिय को होगा
नहीं? हाँ, एकेंद्रियपन कब?
उद्वेलना,
उद्वेलना के बाद जब बांधता है तब।
उद्वेलन प्रकृति के अपेक्षा
जघन्य कब होता है? उद्वेलना वाले प्रकृतियों में जघन्य कब होता है?
बंद होता है तब।
जब बंद होता है तब। अब मनुष्य गति वाले की उद्वेलना होगी क्या? मनुष्य गति में आया है, ख्याल में आई ना बात? वह मनुष्य गति में है तो उसका मनुष्य गति का अनंत गुणा होगा, वो जघन्य की अपेक्षा यहाँ वाला जघन्य। अरे ये हो सकता है सूक्ष्म निगोद में बांधकर मनुष्यों में आया है वगैरह वगैरह ले सकते हैं, फिर भी बाय दैट टाइम उसका अनुभाग भी यहाँ आकर अधिक बंधेगा। आगे बढ़े कि नहीं? नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उक्त प्ररूपणा जिस प्रकार मनुष्यों में की गई है उसी प्रकार मनुष्यनियों में भी करना चाहिए। उक्त दंडक की प्ररूपणा जिस प्रकार नारकियों में की गई है तीरियंचों का हो गया ना, उसी प्रकार है ऐसा कहा। यानी तीरियंच और तीरियंचोनिमति में कोई डिफरेंस नहीं बताया, जगन्य के लिए कोई डिफरेंस नहीं बताया। स्वामी अलग है कहाँ पर होता है, परंतु फिर भी उसका उसका दंडक क्या है, किससे कौन सा अनंत गुणा है, वो वहां पर भी घटित होगा। यानी जगन्य नहीं भी किया है तो भी सम्यक प्रकृति से सम्यक मिथ्या तो अनंत गुणा पाया जाता है। अब जैसे मनुष्यों में वैसे मनुष्यनियों में, जैसे नारकियों में वैसे देवों में और देवी में भी, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जीवों में तीर्य जगति के समान प्ररूपणा करना चाहिए। अब शंकाकार पूछते हैं, विकलेंद्रिय जीवों की यह प्ररूपणा तीर्यंच गति के समान किस कारण से बतलाई है? इसका कारण यह है कि देवगति, मनुष्य गति, नरक गति, वैकिरेक शरीर, चतुष और उच्च गोत्र का संयुक्त होने के प्रथम समयवर्ती जघन्य अनुभाग सत्कर्म विकलेंद्रिय जीवों में पाया जाता है, क्योंकि वो जगन्य अनुभाग सत्कर्म विकलेंद्रिय में कैसा आया होगा, उद्वेलना की, फिर यानी असंगी में बंद करके वहां आया है तथा सासाधन समय दृष्टि में पूर्व विसंयोजित अनंतानुबंधी का संयुक्त होने के द्वितीय समयवर्ती वह जघन्य अनुभाग सत्कर्म विकलेंद्रिय जीवों में पाया जाता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव सासाधन में आ गया, एक समय वहां रहा तो उसने संयोजना की और मरकर मिथ्यात्व में वो विकलेंद्रिय में आ गया, तो वहां उसका जघन्य सत्व पाया जाएगा। इस कारण विकलेंद्रियों की जो वह प्ररूपणा तीर्यंच गति के समान कही है यह ठीक ही कहा गया है। यानी सासाधन में जाकर मिथ्यात्व में आने वाले की अपेक्षा वहां घटित हो सकता है। 398 अब अनुभाग संक्रम में ये भुजाकार आदि बताएंगे। यहाँ भुजाकार संक्रम में अर्थ पद की प्ररूपणा की जाती है, यथा अनुभाग के जो स्पर्धक इस समय संक्रमण को प्राप्त कराए जाते हैं वे यदि अनंतर बीते हुए समय में संक्रामित अनुभाग स्पर्धकों की अपेक्षा बहुत है तो यह भुजाकार संक्रम कहलाता है। यानी वर्तमान में बढ़कर अनुभाग का संक्रमण हुआ, परंतु यदि इस समय में संक्रमण को प्राप्त कराए जाने वाले वे ही अनुभाग स्पर्धक अनंतर बीते हुए समय में संक्रामित स्पर्धकों की अपेक्षा स्तोक है तो यह अल्पतर संक्रम कहा जाता है। यदि दोनों ही समयों में उतना उतना मात्र ही अनुभाग स्पर्धकों का संक्रमण होता है तो यह अवस्थित संक्रम कहलाता है, और पूर्व में असंक्रामक होकर संक्रम करना इसे अवक्तव्य संक्रम कहा जाता है। इस अर्थपद के अनुसार स्वामित्व का कथन करते हैं। मति ज्ञानावरण का भुजाकार संक्रम किसके होता है? जो जीव सत्कर्म से कम अथवा उसके बराबर ही अनुभाग को बांधता हुआ स्थित है वह उससे अधिक अनुभाग को बांधकर वह बंधावली को बिताकर जब उसको संक्रांत कर रहा हो तब उसके मति ज्ञानावरण का भुजाकार संक्रम होता है। अल्पतर संक्रम अनुभाग कांडक घात के बिना नहीं होता, यानी कांडक हुए बिना उसका सत्ता वाला अनुभाग कम नहीं होगा। जो उत्कीर्ण किए जाने वाले, उत्कीर्ण यानी वो कांडक घात होने वाले, जो उत्कीर्ण किए जाने वाले अनुभाग कांडक को उत्कीर्ण कर चुका है, यानी घात समाप्त हुआ, उसका कांडक समाप्त हुआ, वह अनंतर समय में उसका अल्पतर संक्रामक होता है। अवस्थित संक्रामक कौन होता है? भुजाकार अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामक से भिन्न जीव अवस्थित संक्रामक होता है, यानी उतना का उतना अनुभाग का संक्रम चलेगा। शेष चार ज्ञानावरण, ये मति ज्ञानावरण पर घटा दिया, शेष चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साताविद्य असाताविद्य और मिथ्यात्व की प्ररूपना मति ज्ञानावरण के समान है। इसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नौकषायों के संबंध में कहना चाहिए, विशेष इतना है कि यहाँ अवक्तव्य संक्रामक भी होता है। किसके लिए लिया? सोलह कषाय और नौ नौकषाय। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य संक्रम होता है, उनका भुजागार संक्रम नहीं होता। स्थिति में तो लिया था हमने, एक समय के लिए तो हो ही सकता है, परंतु यह अनुभाग में नहीं होगा, क्योंकि है उससे बढ़कर अनुभाग नहीं बनेगा, यानी उसमें मिथ्यात्व में से नहीं होगा। चार आयु कर्मों, सादी सत्कर्मिक नाम प्रकृतियों, यानी सत्ता जिसकी सादी हुई है, यानी उद्वेलना के बाद फिर उसकी सत्ता आ गई, और उच्च गोत्र की प्ररूपना ज्ञानावरण के समान है। विशेष इतना है कि इनका अवक्तव्य संक्रम भी होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य संक्रम होता है, किंतु उसका अल्पतर संक्रामक नहीं होता, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति और अनुभव कांडक होने का सवाल नहीं है। अनादि सत्कर्मिक नाम प्रकृतियों, नीच गोत्र और पांच अंतराय की प्ररूपना ज्ञानावरण के समान है। यानी उसमें अवक्तव्य को छोड़कर बाकी सब हो गए ना। अब एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपना की जाए, भुजाकार में काल लगातार कितने समय तक भुजाकार हो सकता है, उसकी बात है। ज्ञानावरण के भुजगार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय, वह उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। अल्पतर संक्रामकों का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है, एक कांडक के समय होगा। अवस्थित संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय, उत्कर्ष से साधिक दो छासर सागरोपम मात्र है। नव दर्शनावरण, साताविद्य असाताविद्य मिथ्यात्व सोलह कषाय, नव नौ कषाय सब नाम प्रकृतियों, उच्च गोत्र नीच गोत्र और पांच अंतराय की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। विशेष इतना है कि आहारक चतुष्क के अवस्थित संक्रामक का काल पल्यपम के असंख्यातवे भाग मात्र है, यानी उसकी सत्ता उतने टाइम तक ही रहता है।
उन्होंने अवस्थित का काल दो छासठ सागर काल लिया, तो दो छासठ सागर तक एक भी कांडक नहीं हुआ।
था ना,
तो चौथे गुण स्थान में रहा। चौथे गुण स्थान का काल हम लोग
केवल चौथे गुण स्थान में छात्र सागर नहीं बिता सकते।
हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ।
तो मुनि हुए इसलिए कांडक थोड़े होता है। कांडक कब होते हैं? कांडक शुरुआत कब होगी?
अनिवृत्ति, अरे अपूर्व कर्म से ना।
कहाँ पर?
आठवें गुणस्थान।
आठवें गुणस्थान
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि चौथे से पांचवे में जाएगा, पांचवे से छठे में जाएगा, सातवें
में जाएगा? कांडक कहीं नहीं होते, केवल औपशमिक समय तो के काल में हो सकते थे। प्रायगलब्धि में बड़ा कांडक होता है, बाद में उपशम सम्यक तो के लिए भी जो अपूर्व करण है वहां पर भी कांडक होते हैं। अभी सम्यक तो रहते हुए उसके कांडक नहीं होते हैं।
तो इतने काल तक उससे विषयोजना भी नहीं थी।
विषयोजना अनंतानुबंधी में होती है, इसमें क्या
नहीं है? आपके अनंतानुबंधी के विषयोजना की तभी कांडक होते हैं।
नहीं किया उसने।
अच्छा, नहीं किया।
हमको उत्कृष्ट काल निकालना है ना। अवस्थित का काल निकालना है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसी प्रकार सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के भी संबंध में कहना चाहिए, विशेष इतना है कि इनके अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से अंतर्मुत मात्र है और बाकी सबका जघन्य से एक समय भी था। ख्याल में आती है बात? ज्ञानावरण आदि में एक समय के लिए अवस्थित रह सकता था, फिर बढ़कर या अल्पतर कुछ भी हो सकता है उसका। यहाँ तो अंतर्मूर्त के लिए तो सम्यक्त में रहेगा ना, या सम्यक्त में रहने का सवाल नहीं है, क्षपणा करेगा अवस्थित। नहीं, उनका जब से हुआ है, जब से तैयार हुई है, उनका उत्कृष्ट अनुभाग रहता है, उसके इसका संक्रमक रहेगा वो। हाँ, क्षपणा कर देगा। तीर्थंकर नाम कर्म के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। मैंने अंतर्मूर्त तक भुजाकार करता रहा। नहीं, भुजाकार संक्रम तो जैसे यानी अधिक 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 बढ़ते हुए बांधा उसने अंतर्मूर्त तक। भुजाकार वो तो नरक के सन्मुख वाला जो है। तभी उसका भुजाकार होगा ना। नहीं, आप अनुभव की बात कर रहे हैं, आप स्थिति की कर रहे हैं, आप स्थिति की बात कर रहे हैं। अनुभाग बढ़कर बांधा है तो आठवें गुणस्थान में।
आठवें गुणस्थान में तो चौथे से आठवें में जाएगा अंतर्मूर्त में, तो उसका पूजाकार हो जाएगा। क्योंकि बंद चार से
आठवें में,
अरे सातवें में, चौथ कैसे होगा अंतर्मूर्त तक?
देखो, अंतर्मूर्त तक लगातार चल रहे है ना।
हाँ।
अनुभाग का बढ़ प्रति समय अनंत गुणा वृद्धि वाला है ना वहाँ।
हाँ, विशुद्धि में उसका ज्यादा बंद होगा तो जब।
हाँ, तो वहाँ बढ़ते 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 होगा ना, मान में रुक गया बंद। देखो, पहले सातवें गुणस्थान वाला जो सातिशय था, विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है, और जो बंद जो है घटना वो अंतर्मूर्त के बाद एक एक बंद घटता है, परंतु अनुभाग प्रति समय बढ़ता है। तो प्रति समय बढ़ता गया ना ये अनुभाग, करण परिणाम में सातवें और आठवें में प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ अनुभाग बंद किया। सातिशय के अपूर्व करण को भी ले लो ना, जब तक बंद नहीं हुई इच्छित हुई। उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है, तो अधकरण और अपूर्व करण, गुणस्थान, वहां जो बंद है वो तो मरता हुआ किया है उसने, आवली के बाद उसका संक्रम भी जगार होगा, उसके अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम मात्र है, क्योंकि उतना का उतना रहेगा ना इतने काल तक। चार आयु कर्मों के भुजागार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। हाँ, यानी उसका अनुभाग बढ़कर बांधा उसने कंटिन्यूस। इनके अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है, वो घात की अपेक्षा होगा, आयु का घात की अपेक्षा से। अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय है, उत्कर्ष से देवायु और नारकायु का साधिक 33 सागरोपम तथा मनुष्य व तीर्यंच आयु का साधिक 3 पल्योपम मात्र है। काल के आश्रय से अंतर को भी ले जाना चाहिए, इतना ही कहकर छोड़ दिया, यानी भुजागार का अंतर और वैसा। नहीं, भुजागार के अंतर को ऐसा भी ले सकते हैं ना, जैसे जो प्रकृतियां ही नष्ट होने वाली है तो उसका कोई भी नहीं होगा उसमें, मात्र उतना नहीं, जैसे अभी आहारक चतुष्क का, वो तो साधिक अर्धपुद्गल परावर्तन ले लेंगे ना, प्रकृति नहीं बनी ना उसमें, और जो देवगति वगैरह के उद्वेलना हो गई तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक बांधी ही नहीं, ये भी हो सकता है, यानी वो थोड़ा सोच कर देखना चाहिए। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भंग विचय भुजगार वगैरह में लगाना, काल और अंतर को भी सिद्ध करके ले जाना चाहिए, इसी में इतने ही छोड़ दिया उन्होंने। अब 400 पेज पर आते हैं। ये अल्प भूतव जो है ना, वो तो भुजगार आदि में लगाना है, यानी किसी प्रकृति के अल्पतर ज्यादा है कि भुजागार ज्यादा है कि क्या ज्यादा है, वो यहाँ लगाना है के अल्प बोध की प्ररूपना की जाती है। ज्ञानावरण के अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है, भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि अल्पतर केवल कांडक के अंतिम समय में होगा, बाकी तो भुजाकार तो लगातार उसका बंद भी हो सकता है।
अल्पतर करने वाले जीव अनंत है।
हाँ, हो गए, क्योंकि स्थिति कांड घात तो होते हैं ना एक इंद्रियों में, अनुभव कांड घात भी होते हैं। इसी प्रकार नौ दर्शनावरण सातावेदनीय, असातावेदनीय मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ नौकषाय के भी अल्प भूतव का कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि सोलह कषाय और नौ नौ कषाय के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है, क्योंकि उनमें अवक्तव्य भी पाए जाते हैं, इसलिए वो स्तोक है। अवक्तव्य कब कहेंगे? अनंतानुबंधी की संयोजना होने पर और बाकी उपशम श्रेणी से उतरते समय, और बाकी जो हमने ज्ञानावरणादि में लिया था वो तो हत समुत्पत्तिक में भी अल्पतर वगैरह वो उसमें ले ले। देखो देखो ये ज्ञानावरण पर हम लगा रहे थे ना कि ज्ञानावरण के अल्पतर स्तोक है, भुजाकार असंख्यात गुण है, अवस्थित असंख्यात गुण है, उसमें तो अवक्तव्य नहीं लिया था, नौ दर्शनावरण वगैरह वगैरह देखा था उसमें अवक्तव्य भी होते हैं। अल्पतर अनुभाग संक्रामक अनंत गुण है, भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुण है, अवस्थित अनुभाग संक्रामक संख्यात गुण है, अवस्थित संख्यात गुण है, यानी ये किसके बारे में? सोलह कषाय और नौ नौ कषाय के बारे में था, क्योंकि वहां उन्होंने अवक्तव्य को एक नंबर पर लिया ना, हाँ, फिर दो नंबर पर अल्पतर वो अनंत गुणे हो जाएगी, भुजाकार उससे असंख्यात गुणे, यानी वो भी अनंत है, और अवस्थित उससे संख्यात गुणे, क्योंकि संख्यात समय तक वो अवस्थित रहेगा। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है, अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। हाँ, जब उनकी सत्ता तैयार हुई, अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, जब तक वेदक सम्यक्त्व में रहते तो अवस्थित अनुभाग संक्रामक भी होगा, केवल अल्पतर जब हो गए वो तो क्षपणा में हो गए। अब नारकायु की बात, नारकायु के अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है, जो घातायुष का होता है ना, तब उसका अल्पतर हो जाएगा। अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं, हाँ हो गए ना, असंख्यात हो गए, इसलिए अवक्तव्य उससे संख्यात गुणे कहा, क्योंकि वह नरकायु का बंध शुरू किया तभी, बंध प्रारंभ है ना। भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, यानी अंतर्मूर्त को तो बंध किया, अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, देवायु के इस अल्पभूत की प्ररूपणा नारकायु के समान है, मनुष्यायु के अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है, अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक विशेष अधिक है, भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अवस्थित अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं, तिर्यकायु के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है। देखो यहाँ अवक्तव्य सबसे कम लिए, अन्यत्र वो अल्पतर को लिया था, यहाँ अवक्तव्य कम है, क्योंकि वो तीरें जो बहुत अनंत है ना, बहुत कम जीवों का, क्योंकि वो तो बद्यमान भी तीर्यकायु और भुज्यमान भी तीर्यकायु है, इसलिए उसे अवक्तव्य करने वाले कम हो गए। अल्पतर अनुभाग संक्रामक अनंत गुणे हैं, अल्पतर वाले अनंत गुणा करते घात वाले, भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, और वो घात तो एक समय में हुआ, पर भुजाकार तो अवलित है, सॉरी अंतर्मूर्तक हुआ, और अवस्थित अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे। अब यही रुकेंगे, चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो।